Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse Number 7. ये अत्यंत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, परंतु क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि भगवान के हर शब्द को समझ सके, और हमें वही चीज में ज्यादा रुचि होती है जो हमें अच्छे से समझ में आए, है ना। लेकिन ये चैप्टर नंबर 7 से भगवान ने जो अपना दिव्य ज्ञान देना शुरू किया है ना, वो इतना सरल भाषा में, क्योंकि भक्ति योग है, इतना सरल शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है कि हम जैसे मूढ़ व्यक्ति जो है ना, वो भी उसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो आज का श्लोक अत्यंत ही सुंदर है, और इसको समझने से हमें भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि वास्तव में इस संसार में मैं क्या हूँ। भगवान बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वं इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वं इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वं इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। शब्दात् मत्तः, यानी भगवान स्वयं को इंगित करते हुए कहते हैं मुझसे, परतरम अर्थात श्रेष्ठ नहीं है, अन्यत किंचित अन्य कुछ भी नहीं है, अस्ति है धनंजय, हे धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोतम, मई मतलब मुझ में, सर्वम यानी सब कुछ, इदम यानी यह जो कुछ दिखता है, प्रोतम गुंथा हुआ है, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मतलब धागे में, मणिगणा अर्थात मोतियों के दाने, इव सदृश्य। अनुवाद, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे हुए रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक श्रीमद् भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है, और वे सच्चित आनंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निर्विशेषवादी श्वेताश्वत्र उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम् तद्रूपम् अनामयम् य एतद् विदुरमामृतास्ते भवन्त्यधीतरि दुःखमेवापि यन्ति। अर्थात भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। ततो यदुत्तरतरम् लेकिन तद अरूपम् और आगे है किंतु ब्रह्मा के परे भी एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। तद अरूपम यानी उसका कोई स्वरूप नहीं है और जो समस्त भौतिक कल्मस से रहित रहता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है किंतु जो उसे नहीं जान पाते हैं वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। मतलब इस श्लोक को ऐसे समझा रिश्ला प्रभुपाद जी कि ततो यदुत्तरतरम् कि ये जो संसार है उसको बनाया किसने? ब्रह्मा जी। लेकिन उससे तद अरूपम अनामयम लेकिन उससे भी परे भगवान का एक निराकार स्वरूप है। यह एतद्विदुरमामृतास्ते यानी कि जो इसको जान लेता है जो इस निराकार स्वरूप को भगवान के जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। और उसके बाद क्या? भवन्त्ये थे तरे दुःखमेवाप्यन्ति और किंतु जो उसे नहीं जान पाता है वे सांसारिक दुखों को भोगता रहता है। अभी इस श्लोक को निर्विशेषवादी कैसे समझते? श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना तद अरूपम अनामयम, अरूपम मतलब उसका रूप नहीं है, उस पर ज्यादा बल देते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चित आनंद स्वरूप का सूचक है जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने पहले ही ब्रह्म संहिता के विषय में लिखा है ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब भगवान का सच्चिद आनंद स्वरूप है और जो ब्रह्म ज्योति है जो निराकार स्वरूप है वो साकार से ही उत्पन्न होता है। जैसे ब्रह्म ज्योति का क्या मतलब होता है? सूर्य का जैसे प्रकाश, ठीक है। अब प्रकाश है तो डेफिनेटली वो कहीं से तो आ रहा है, आपको भले सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इतनी तो जीव को बुद्धि यूज करनी पड़ेगी ना कि कहीं सूर्य है तभी तो उसका प्रकाश है। तो भगवान का वो जो साकार स्वरूप है उसका ही जो तेज है उसी को तो ब्रह्म ज्योति, उसी को तो निराकार रूप कहा जाता है भगवान का जो कण कण में दिखता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चित आनंद स्वरूप का सूचक है कि उसकी तरफ इशारा करता है जिससे ये निराकार आया है वो जरूर उसका कोई ना कोई वास्तविक स्वरूप है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम, चाहे जो कुछ भी है चाहे परमात्मा है या निराकार है या ब्रह्म है उसका कारण भगवान श्री कृष्ण है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्वेताक्षर उपनिषद के अन्य श्लोक 3.8 and 9 में से भी इसी की पुष्टि होती है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वा नतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय यस्मात् परम न परमस्ति किंचित् यस्मान्नायो जो नो जायोस्ति किंचित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति कः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। अर्थात मैं उन भगवान को जानता हूँ, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, वो भगवान को जानता हूँ जो आदित्य वर्णम तमसा परास्तात, अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। तमेव विद्वान इति मृत्युमेति, उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यानाया, और उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। यानी वो भगवान जो अंधकार से यानी अज्ञान से परे हैं, उनका स्वरूप यानी कि उनको जाना जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, वो पूर्ण है। भगवान के सारे रूप हैं, भगवान साकार भी है निराकार भी है, भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान भी है। तो ऐसे भगवान को यदि कोई जान लेता है तो यहाँ तो उससे ही जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यानाया, उसके अतिरिक्त जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का या मोक्ष का अन्य कोई और साधन नहीं है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जो उन परम पुरुष भगवान से उन परम पुरुष भगवान से बढ़कर ना परमस्ति किंचित और कोई भी सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठतम है। यस्मान् ननीयो नो जायस्ति किंचित, और वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महानतर है। वे मूक वृक्ष, आगे कहते हैं वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठतेकस, यानी जो मूक वृक्ष के समान स्थित है, मतलब वो वृक्ष के समान है, भले बोलते नहीं, मूक का मतलब होता है साउंड नहीं निकालते हैं बिल्कुल भी, जहां पर भी विद्यमान है तो भगवान है, लेकिन भले ही अपने विषय में बता रहे नहीं है, और वे दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है। वो भगवान जो है वो सारे जो ब्रह्म ज्योति है वो सब भगवान के शरीर से ही निकली होती है। जिस तरह से वृक्ष अब है तो उसकी जड़ें हैं ना, अब जड़ें खाली कैसे हो सकती हैं, उसी तरह से भगवान है तो ही ब्रह्म ज्योति है, ज्योति खाली कैसे हो सकती, कहीं से तो ज्योति आई होगी ना। तो जिस प्रकार विश्व अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्तियां हैं, उसी तरह से वो फैल रही होती हैं जिस तरह से वृक्ष की जड़ें फैलती हैं। तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं, और वही पूर्ण पुरुष ही सब कुछ है। इन श्लोकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को समझने के लिए और इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है कि हम भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन शब्दों को श्रवण करने का हमें भगवान ने अवसर प्राप्त कराया है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन परम पवित्र शब्दों को श्रवण कर। इस संसार में हर कोई लोग को कुछ न कुछ सुनना पड़ता है। ये कान जो होते हैं इनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता, हर वक्त कुछ न कुछ उनको श्रवण करना पड़ता है। लेकिन कान की यदि कोई सार्थकता है, यदि श्रवण योग्य कोई है, तो वो केवल और केवल भगवान के शब्द, भगवान की कथा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। बाकी जितना भी हम कुछ कूड़ा करकट जितना भी अपना कानों में डालते जाएंगे उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। या तो क्या सुनेंगे, अगर कृष्ण को हटा दिया जाए तो केवल और केवल भौतिक वस्तुएं ही श्रवण करने के लिए हैं। इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या हो रहा है, वहां पर जो मैच खेल रहे हैं उनके विषय में जानना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में विविध प्रकार के कचरों को एक साथ इकट्ठे करके जो बताया जाता है वो श्रवण करना पड़ेगा। किसी की निंदा श्रवण करनी पड़ेगी, किसी की मनुष्य की, तो इससे क्या होगा, जो भी आप श्रवण कर रहे हो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होगा कि आपका नुकसान होगा, क्योंकि कर्म बन रहा है ना आपका। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि आपका जो इतना कीमती समय है, ये जो भगवान ने ये जो जन्म दिया है ना मनुष्य का, वो आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और इस लिमिटेड टाइम पीरियड को आप किस तरह से बुद्धिमानी के साथ यूज करते हो कि आप इस लिमिटेड टाइम में अपने गोल तक पहुंचते हो। ठीक है, जैसे हम कोई रेस शुरू करते हैं ना, तो सामने गोल होता है और आपके पास टाइम पीरियड होता है कि भाई आप 2 मिनट में या 3 मिनट में आपको यहाँ तक पहुंचना है। उसी तरह से भगवान ने आपको यह मनुष्य जन्म दिया है और मैक्सिमम 100 ईयर्स रखे हैं, लेकिन ये कलयुग है ना, इतना जिस तरह से कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो मनुष्य की आयु तो क्षीण होती ही जा रही है। तो आज हमारे पास 50 से 60 साल तक ही की आयु है। अब हम में से कोई 30 साल के हैं, कोई 32 साल के हैं, कोई 40 के हैं, मतलब अब हमारे पास इतना थोड़ा सा समय रह गया है। और इस समय में भी यदि हम भौतिक वस्तुओं के विषय में ही खाली श्रवण करते रहेंगे तो फिर हमारा सारा समय जाया हो जाएगा ना। इसीलिए भगवान ने हम पर कृपा की है और हमें आज अपने विषय में बता रहे, अत्यंत ही सुंदर मेरा प्रिय श्लोक है। भगवान ने सबसे पहले तो भगवान ने इस श्लोक में बताया कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना इस अध्याय में, उससे बढ़कर अगर तुम ये जान लोगे ना, तो उसके अतिरिक्त और कुछ जानने योग्य नहीं मिलेगा, इससे बढ़कर और कुछ जानने योग्य है ही नहीं। और भगवान ने बताया कि हर कोई जान ही नहीं सकता, हजारों में से कोई एक तो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। अब जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं उनमें से भी कोई एक ही होता है जो मुझे जानता है। और अपने विषय में, अब भगवान के विषय में जानना है तो डेफिनेटली वो स्वयं बताएंगे, तभी हम उसको जान सकेंगे। और भगवान अपने विषय में बताना शुरू कर रहे हैं। भगवान कहते हैं पहले तो अपने जो ऐश्वर्य है, भगवान की शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति के विषय में बताया, और आज कह रहे हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, तुम ये जान लो कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। ये कितना भगवान ने क्लियर बताया, मत्त यानी मुझसे परतरम यानी श्रेष्ठ नान्यत् नहीं है, किंचित् कुछ भी अस्ति इस संसार में। इतना क्लियर बताने के बाद भी आजकल अगर हम लोग संसार में देखते हैं तो लोग भगवान कृष्ण की ओर इतना आकर्षित नहीं होते, मतलब इतना क्लियर स्टेटमेंट और कहीं भी किसी देवता के लिए नहीं कहा होगा या किसी के लिए भी नहीं कहा जाता कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, मैं परम सत्य हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो रेज होता ही है कि जब हमारा शास्त्र इतना क्लियरली बता रहा है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, तो लोग कृष्ण की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते, है ना। मुझे हमेशा लगता है कि चलो कृष्ण भगवान है और इतना क्लियरली हमारे सारे शास्त्र, वहां भागवत कहता है कि एते चन सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां ब्रह्मा जी खड़े होकर कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, और स्वयं चलो और खुद ही भगवान खड़े होकर कहते हैं युद्ध भूमि में मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। फिर अब कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब होने की या फिर भ्रमित होने की तो कोई कॉज ही नहीं है ना। साफ साफ भगवान ने कहा है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, फिर लोग क्यों नहीं इस बात को समझते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है ना। तो भगवान ने कहा है, आगे भगवान कहेंगे ये चैप्टर इतना अच्छा है कि इसमें भगवान हमारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान कहते हैं 25 में, इसी अध्याय में जब हम श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे तो उसका उत्तर भगवान देते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, भगवान बोलते हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। और क्या करता, योग माया समावृता, योग माया के द्वारा अपने ऊपर एक पर्दा डाल देता हूँ। मूढ़ोयम नाभिजानाति, जो मूढ़ होते हैं वो मुझे नहीं जान सकते। मूढ़ का, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि मूढ़ का क्या मतलब है जो भगवान को नहीं जान सकते। मूढ़ का मतलब होता है जो अपने आप को देह समझते हैं और केवल इंद्र तृप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य होता है। अब यहाँ पर हम संसार में देखते हैं तो 99.9% लोग यही ऐसे ही होते हैं जो केवल और केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सोचते हैं। अब भक्त तो संसार में बहुत थोड़े ही है ना, भगवान ने स्वयं पहले कह दिया कि भक्त तो हजारों में से कोई एक ही बनेगा कृष्ण का, तो बाकी सारे 999 क्या करेंगे, वो तो केवल इंद्रिय भोग के लिए ही अपने कार्य करेंगे ना। तो जब उनका लक्ष्य इंद्रिय भोग है तो वो कैसी दिशा ढूंढेंगे कि हम ऐसी जगह पर जाएं जहां से हमें इंद्रिय भोग अति शीघ्र और बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्राप्त हो सके। तो जाहिर सी बात है भगवान के पास जाकर उनको इंद्रिय भोग नहीं, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि शास्त्र हैं, अनेक अनेक शास्त्र हमारे पास हैं, जुगुप्सित धर्म जिसको बताया जाता है कि ये करो तो ये प्राप्त होगा, ये करो तो ये प्राप्त होगा, ये करो तो भगवान बताएंगे आगे 20 श्लोक नंबर 20 में, कामस्थास्थ हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयं, कि जिनकी बुद्धि काम वासनाओं द्वारा, इच्छाओं द्वारा मारी गई है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं के पास जाएंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे। और क्या करेंगे उधर जाकर, तम तम नियममास्ताय, और उनकी जो भी नियम होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके द्वारा उन देवताओं की पूजा करेंगे। यानी कि भगवान ने स्वयं पहले ही इसी अध्याय में बताएंगे कि भले ही मैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। अब इसका प्रमाण भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है कि अगर कोई बुद्धिमान होगा और वास्तव में भगवान को जानने की चेष्टा करेगा ना, तो फिर वो फटाक से भगवान को समझ जाएगा। क्योंकि हर एक जगह पर भगवान ने अपने भगवत्ता का प्रमाण दिया है। सबसे पहले शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में साफ लिखा है, हमारे शास्त्र यहाँ तक श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये समझो एकदम क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं। इसके अलावा जो जो जिस जिसने भगवान को स्वीकार नहीं किया, वो भले कितना ही बड़े से बड़ा देवता, भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम चैप्टर के प्रथम श्लोक में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा जी जो है जिसको हम क्रिएटर मानते हैं ना, उनको भी तेने ब्रह्म हृदय, उनके भी हृदय में ज्ञान आपने दिया है। वेदव्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान आपने दिया, लेकिन इतने बड़े मुह्यंति यत् सूरया, लेकिन आपकी लीलाएं इतनी मनोहर होने के साथ साथ इतनी विस्मयकारी है, इतनी हैरत वाली है, आश्चर्यजनक लीलाएं हैं, मोहयंति यत् सूरया, कि बड़े बड़े सूर्य भी, सूरया मतलब देवता भी आपकी लीलाओं से विमोहित हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया स्वयं कृष्ण ने, और हम कृष्ण लीला में देखते हैं जब भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन खा रहे होते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी हैरत में पड़ जाते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान ने गोकुल में अवतार लिया है, और ये भगवान हो सकते हैं? अपने मित्रों के साथ इस तरह से बात, इस तरह से लीला कर रहे होते हैं ना कृष्ण, कि स्वयं ब्रह्मा जी भी चक्कर में आ जाते हैं कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, चलो इनकी प्रतीक्षा परीक्षा लेते हैं। तो भगवान क्या करते, ब्रह्मा जी क्या करते, सारे ग्वाल बालों को, सारे पहले क्या करते, वहां पर जो गायें होती है ना, सारी चरने के लिए उन्होंने छोड़ दी होती है, गायों को सबको ब्रह्मा जी कैद करके अपने ब्रह्मलोक में लेकर जाते हैं। अब जब उन्होंने खाना प्रसाद वसाद खा लिया, भोजन करने के बाद सारे ग्वाल ढूंढने गए गायों को, तो गाय तो थी नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उन सारे जो ग्वाल बाल है ना उनको भी लेकर चले गए। अब भगवान ने देखा ये मेरा बच्चा अभी मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं भगवान हूं या नहीं हूं, ठीक है लेने दो उसको परीक्षा। अब भगवान ने क्या किया, स्वयं अपने अंदर से ही उतने ही सेम टू सेम ग्वाल बाल भी बनाए, गाय भी बनाई, बछड़े भी बनाए, सब बनाए और फिर चले गए घर वापस सबको लेकर। अब वहां से ब्रह्मा जी गए उधर अपने सारे ग्वाल बालों को लेकर अपने ब्रह्म लोक में, लेकिन भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अपने में से अनेक शक्तियों को अनेक स्वरूपों को प्रकट कर सकते हैं। तो फिर वहां पर सब चले गए, तो फिर जब वापस ब्रह्मा जी ने आके देखा तो सारे ग्वाल बाल हैं, सारे कृष्ण भी है, सारे गवें भी हैं। और इस समय ब्रह्मा जी को लगा, पता चला कि वाकई में उधर जाके देखा कहीं वो वापस तो नहीं आ गए, ऊपर भी नहीं थे, ऊपर भी सारे थे जो वो चोरी करके गए थे और यहाँ पर भी सारे थे। तब उनको यकीन आया कि ये भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान की शरणागति हो गए। भगवान की बहुत बहुत प्रार्थनाएं की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने भागवत में इतना बड़ा चैप्टर है, 52 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की है ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने यह सिद्ध किया है उन प्रार्थनाओं में कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी भगवान हो ही नहीं सकता। अब देखो, लेकिन फिर भी जो जितने बड़े बड़े ऋषि हैं, देवता हैं, उनको साबित करना पड़ता है ना कि भगवान कृष्ण ही है। एक बार क्या हुआ कि सारे ऋषिगण गंगा के तट पर जमा थे और वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं ब्रह्मा तो भगवान नहीं है क्योंकि क्रिएटर तो वही है। अब जो क्रिएटर होता है उसकी ओर ज्यादा होता है कि यही भगवान हो सकता है जिसने जो सृजन करते हैं। और कोई बोल रहा नहीं नहीं सृजन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रलय करना बहुत बड़ी बात है, शिव जी भगवान होंगे। कोई बोल रहे थे नहीं विष्णु भगवान होंगे क्योंकि विष्णु भगवान पालन करते। तो बोला चलो ठीक है हम इन तीनों की परीक्षा लेते हैं। तो भृगु मुनि को बोला गया कि आप जाइए सबकी परीक्षा लीजिए कि कौन वास्तव में इन तीनों में से ग्रेट कौन है, इन तीनों में से महान कौन है। तो भृगु मुनि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिताजी हैं, लेकिन भृगु मुनि वहां पर जाकर परीक्षा कैसे ली, उनको प्रणाम नहीं किया, उनका आदर नहीं किया और उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भृगु मुनि आया है और इस तरह से ना मुझे प्रणाम कर रहा है ना ही मेरा आदर कर रहा है, तो ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और वो श्राप देने ही वाले थे कि तुम पुत्र हो मेरे, तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए था, ना प्रणाम किया, मतलब कुछ एब्यूज वर्ड्स भी नहीं बोले, लेकिन खाली प्रणाम ना करने के कारण वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गए उनके ऊपर कि। लेकिन फिर वापस वहां से जब भृगु मुनि ने देखा कि पिताजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, तो बोला ये सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, इतनी थोड़ी सी बात के लिए वो क्रोधित हो गए। और फिर वापस उसके बाद गए शिव जी के पास। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं, तो भृगु मुनि और शिव जी दोनों आपस में भाई हैं। जब शिव जी ने भृगु मुनि को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए और उनको प्रेम से आलिंगन करने के लिए उनकी ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही शिव जी भृगु मुनि के पास आए तब भृगु मुनि ने फौरन से मना कर दिया, दूर दूर दूर, आप मेरे करीब नहीं आइएगा, आप देख नहीं रहे हो मैं कितना शुद्ध ब्राह्मण हूँ, अभी मैं स्नान करके आया हूँ और आप अपने अपनी ओर जरा देखिए तो सही, शमशान की भस्म लगी हुई आपके शरीर पर, नाग पहने हुए, खोपड़ियां पहनी हुई है, आप अगर मुझे स्पर्श करोगे ना तो मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा, आप तो कितनी अपवित्र वस्तुओं को अपने ऊपर धारण करते हो। शिव जी ने जब ये सुना कि भृगु मुनि ने मुझे ऐसे बोला है, तो फिर उसको इतना क्रोध आया, निकाला अपना त्रिशूल, बोला तुम मुझे, मैं तुम्हारे स्पर्श करूंगा तो तुम अपवित्र हो जाओगे, अभी मैं तुमको पवित्र करता हूँ सीधा। तो ऐसे ही शिव जी ने जैसे अपना त्रिशूल निकाला, भृगु मुनि वहां से भी निकल पड़े और आगे वो चले गए विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए। विष्णु भगवान शिव सागर में बैठे हुए थे। लक्ष्मी महारानी उनके चरण दबा रही थी। बहुत ही सुंदर वातावरण था और भृगु मुनि ने आते ही विष्णु भगवान लेटे हुए थे, आंखें भी बंद थी, मंद मंद मुस्करा रहे थे। अत्यंत ही सुंदर छवि थी। लक्ष्मी महारानी भी उनके साथ थी और आते ही जोर से विष्णु भगवान की छाती पर उन्होंने पैर मारी, लात मारा अपना। और जैसे ही लात मारी तो विष्णु भगवान फौरन से जाग गए और जागते ही सबसे पहला कार्य किया, भृगु मुनि के चरण दबाने लगे और उनके नेत्रों से अश्रु निकले। बोला, मुझे बहुत ज्यादा खेद है मुनिवर कि मेरी छाती बहुत ही कठोर है, आपके चरण तो कितने कोमल हैं। मुझे पता है कि आपने जब मेरे आपके चरण जब मेरी छाती के ऊपर लगे थे तो उस समय अवश्य ही आपको बहुत पीड़ा हुई होगी, तो मुझे आप कृपया सेवा का अवसर दीजिए ताकि मैं आपके चरणों की मसाज कर सकूं, उनको कष्ट से वापस सहला सकूं। जब भृगु मुनि ने देखा कि भगवान की इतनी विनम्रता, अब यहाँ पर हम देखें कि ब्रह्मा जी को उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे थे, सिर्फ मन से, यानी कि उनका आदर नहीं किया था, सिर्फ है ना मानसिक उनको पीड़ा दी थी एक तरह से। और शिव जी को क्या वाचक पीड़ा दी थी, बोल कर किया, उनको स्पर्श नहीं, उसको मारा किया कुछ भी नहीं था, यानी कि फिजिकली उनको कुछ भी टॉर्चर नहीं। लेकिन भगवान विष्णु को तो डायरेक्ट से आकर लात मारी थी। अब हम यहाँ पर देखें कि हम अगर कहीं आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हों और कोई आकर हमें लात मारता है तो हमारा क्या वहां पर रिएक्शन होगा, है ना। हमारे घर में आकर कोई हमें लात मार रहा है, कुछ भी हमारा उसके साथ दुश्मनी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम उसी टाइम पर उसको दो लाते मारेंगे, है ना, ऐसा करेंगे ना। मेरे घर में आकर मुझे व्यवहार करता है, मेरा कोई कसूर भी नहीं है फिर भी। लेकिन यहाँ पर भगवान की महानता को दिखाते हुए बताते कि भगवान ने उनको और भी अपने सिंहासन पर बिठाया, उनकी मसाज चरणों की और मुझे और बोला, मुझे क्षमा कर दो कि मेरे कारण आपके पैर में इतना कष्ट पहुंचा। तो यहाँ पर भृगु मुनि ने ये साबित किया कि चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे खुद दूसरे देवी देवता हो, उनमें सबसे महानतम यदि कोई है तो भगवान विष्णु है। तो उस समय लक्ष्मी महारानी भी वहां पर बैठी थी। अब भगवान तो किसी का भी अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध पार्षद है ना, वो कभी भी भगवान की इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी समय लक्ष्मी महारानी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने भृगु मुनि के सहित समस्त ब्राह्मणों को शाप दिया कि जहां जहां ब्राह्मण होंगे ना, वहां पर मैं कभी नहीं आऊंगी। ब्राह्मण लोग भगवान की परीक्षा लेते वक्त ये भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है और हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। भगवान को लात मारना क्या ये शोभा देता है किसी ब्राह्मण को? आज के बाद में किसी भी ब्राह्मण के पास नहीं आऊंगी। तो इसी शाप के कारण हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो ज्यादातर सदैव उनके पास धन नहीं होता है। तो यहाँ पर साबित हुआ कि कृष्ण विष्णु ही परम भगवान है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि विष्णु परम भगवान है, तो यहाँ पर हम कृष्ण को कैसे कह रहे हैं? तो हम उसी कथा से आगे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने जब जाके ऊपर देखा सारे ग्वाल बाल थे, और नीचे आके देखा तो सारे ग्वाल बाल थे। फिर सारे ग्वाल बाल भगवान की आके स्तुति की और सारे ग्वाल बाल भगवान को लौटा के दिए। तो फिर भगवान जो सारे ग्वाल बाल जो भगवान के अंदर से निकले थे वो चतुर्भुज जी विष्णु रूप बन गए। यानी कि भगवान ने अपने अंदर से इतने विष्णु रूप प्रकट किए थे। इससे क्या समझ में आता है कि विष्णु जो है वो भगवान का प्राकट्य है। इसे हमें श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण मिलता है कि भगवान में से तीन पुरुष अवतार होते हैं। पहला कारण दक्षाय विष्णु होता है, फिर गर्भो दक्षाय विष्णु होता है, क्षीरो दक्षाय विष्णु होता है। ये तीनों विष्णु जो है वो भगवान की शक्ति है। और ब्रह्मा जी भी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, यस्यै कनिष्वसितकालमथावलम्भ जीवन्ति लोम विलज जगदण्डनाथ विष्णुर्महंस इह यस्य कला विशेष। कि यस्यै कनिष्वसितकालमथ, जो एक श्वास लेते हैं और अनेक अनेक ब्रह्मांड जिससे निकलते हैं, और सारे ब्रह्मांडों को जो चला रहे हैं, जो उनको निर्माण कर रहे हैं, विष्णुर महान स इह यस्य, वो कारण दक्षाय विष्णु, वो क्षीरो दक्षाय विष्णु, वो गर्भो दक्षाय विष्णु भी, भले ही वो कितने ही महान है, कितने ही महान महान कार्य कर रहे हैं, विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो, लेकिन वो महान विष्णु भी उस भगवान के केवल एक कला है, केवल एक अंश के बराबर ही है। और आगे वो कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम नमामि, कि जो सब कुछ हो रहा है, जो क्रिएटर्स का क्रिएटर है वो भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सारे देवी देवता भगवान की शक्तियां हैं, भगवान ने उन्हें जैसे कोई ना कोई कार्य सौंपा है, ड्यूटीज दी हैं कि आपको ये कार्य करना है। वो देवता कभी भी भगवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूढ़ लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनका उनको भगवान कहकर। लेकिन भगवद गीता में भगवान बताते हैं 9.23 में, ये अप्यन्य देवता भक्तो यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। अगर कोई दूसरे देवी देवताओं की पूजा भी करता है और बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ उनको पूजता है, लेकिन वो भी मेरी ही पूजा करता है, लेकिन अविधि पूर्वकम्। अविधि पूर्वकम का मतलब है कि वो सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। मतलब जैसे अगर वृक्ष को सींचना है तो उसकी जड़ में पानी देना चाहिए या एक एक पत्ते को निकाल कर उसको ट्रब में रखना चाहिए। अगर हम एक एक पत्ते को निकाल कर उसको पानी के टैंक में रख देते हैं तो उससे वृक्ष को कोई फायदा नहीं होगा, वृक्ष कभी भी नहीं बढ़ेगा उससे। अगर सारी बल्कि वृक्ष तो ना उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पत्ते जितने भी निकलते 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 वृक्ष तो ऐसे का ऐसा रहेगा, बल्कि जो पत्ते निकले वो सूख जाएंगे, ऐसा होगा ना। तो उसी तरह से यदि हम देवताओं को भगवान से विभिन्न, भगवान से पृथक करते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, समस्त देवताओं के स्वामी। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अब कोई कोई को ऐसा लगता है कि हम भाई शुरू से ही तो अपने किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हम भगवान उनको छोड़ के अब भगवान की कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो यही सवाल किया था नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने कि हम शुरू से इंद्र की पूजा करते आए हैं, इंद्र वर्षा देते हैं, वर्षा के कारण हम क्योंकि सब वैश्य हैं और है ना गौ पालन से हमारा सब चलता है, तो वर्षा से ही घास होती है और हमारी गवों का सब हो रहा होता है पालन पोषण, जिसके कारण हम सब चल रहे हैं। तो फिर है ना हम इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं साल में एक बार। हालांकि देखा जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, साल में एक बार अगर किसी की पूजा हो रही, लेकिन भगवान ने उस समय अपने माँ बाप को भी मना कर दिया कि नहीं, जरूरत है आपको देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरा ही स्वरूप है गोवर्धन, आप चलो गोवर्धन की पूजा करो। भले ही उस पूजा करने के बाद इंद्र ने कितने ही कष्ट दिए भगवान को, भगवान ये गोकुलवासियों को, लेकिन भगवान ने उन सब कष्टों से रक्षा तो की ना। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि भले ही रक्षा की लेकिन कष्ट भी तो आए ना, कष्ट उस समय के लिए आए, लेकिन वास्तविक कष्ट क्या है जीव का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अगर हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर बताया शिला प्रभुपाद जी ने श्वेता उपनिषद के श्लोक का यहाँ पर उल्लेख किया है, उसकी सेकंड लाइन में देखिए, तमेव विद्वान इति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाया। यानी कि एक केवल कृष्ण ही ऐसा है जिसको जानने से, जिसकी पूजा करने से, जिसकी भक्ति करने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यानी भगवान के अतिरिक्त और कोई ऐसा है ही नहीं, भगवान के अतिरिक्त जन्म मृत्यु के बंधन का, बंधन से छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं है, मोक्ष प्रदान करने वाला और कोई भी नहीं है। तो भले ही अगर हम कोई और मतलब भगवान की पूजा करते हैं उसमें यदि हमें कोई कष्ट भी मिलता है, लेकिन वो कष्ट भी हमें मिलेगा उस टाइम पर भी हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। हम यहाँ पर भी देखते हैं कोई साधारण मालिक यानी कि स्वामी अगर होता है किसी के, हम सर्विस करते हैं तो उसका जो सेवक होता है, यदि वो बहुत ही सिंसियरली सेवा कर रहा होता है, तो साधारण दुनिया का मालिक भी क्या करता है, उसको सारी चीजें प्रोवाइड करता है ना। अगर कभी वो बीमार हो जाता है तो भी उसको, भले वो सैलरी तो दे ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है तो वो दवाई के लिए पैसे देता है। स्कूल अगर बच्चों की होती है और बच्चों को है ना बैग चाहिए होता है या यूनिफॉर्म चाहिए होता है या फिर बुक्स चाहिए होती हैं, तो वो लेकर देता है ना। अच्छा, अगर अमीर होगा उसका मालिक, और दूसरा अच्छा होगा यानी कि आपके साथ हितैषी होगा, सुहृद होगा, तो क्या करेगा वो, और दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, सिंसियरिटी। अगर सेवक सिंसियर है तो मालिक भी यदि सिंसियर है तो क्या होगा, एक दूसरे की विशेष का यानी कि ख्याल रखेंगे। अब सेवक क्या सोचेगा कि कैसे मैं अपने मालिक को खुश करूं, तो मालिक की भी यही इच्छा होती है कि कैसे मैं अपने सेवक को खुश रखूं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये साधारण सी बात मैंने इसलिए बताई है कि इस संसार में यदि साधारण व्यक्ति भी ऐसी बुद्धि रखता है कि जो मेरी सेवा करता है उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर भगवान के विषय में हम ये कैसे भूल जाते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान भी ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, वो मेरी सेवा कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मैं उसे समस्त सुविधाएं प्रोवाइड करूंगा। और भगवान समस्त कारणों के कारण है, सर्वशक्तिमान है। भगवान की क्वालिटीज हैं कि ना भगवान से ज्यादा कोई बुद्धिमान हो सकता है, ना भगवान के ज्यादा कोई शक्तिमान हो सकता है, ना भगवान के ज्यादा कोई धनवान हो सकता है। भगवान हमको संपूर्ण प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं भौतिक कष्टों से, तो फिर ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि हम भगवान के अतिरिक्त कहीं और सुरक्षा ढूंढते हैं। भगवान की शरण में आना जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है, और जब जिस दिन भगवान की शरण में जीव आ जाता है, समझो उससे कंप्लीट प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अगर आपसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है तो आप दिखते क्यों नहीं हो? सत्य तो दिखना चाहिए संसार में, तो आपके अतिरिक्त और सब कुछ दिख रहा है, आप भी नहीं दिख रहे हो। तो भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि जो संसार मैंने पूरा मणियों की तरह पिरोया हुआ है, जैसे मणियां होती है ना क्रिस्टल्स हो, तो क्या होगा वो वैसे तो बिखरे हुए होते हैं ना। मणियों की वास्तविक कंडीशन क्या है कि वो अलग अलग होते हैं, और अगर उसको कोई धागे के अंदर पिरो देता है बहुत ही कलाकारी के साथ अच्छे तरीके से, तो आपको काली मणियां दिखेंगी, धागा नहीं दिखेगा, है ना। देखा ना ऐसा, अगर धागा दिख रहा है तो समझो वो सही तरह से नहीं बनाया गया। वो हार जो बनाया है जो क्रिस्टल्स का, वो इतना सुंदर अगर आपको बनाना है तो उसकी सुंदरता क्या है कि उसके अंदर धागा नहीं दिखना चाहिए। उस तरह भगवान कहते हैं ये सारा संसार मुझ पर टिका हुआ है, मुझ पर आधारित है। जैसे ये ब्रह्मांड गोल है ना, उसे इसीलिए भगवान ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि सारा ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड आपको दिख रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सब गोल 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 दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर पिरोए हुए हैं और मैंने इतनी कलाकारी से, इतनी कारीगरी के साथ इनको अपने अंदर पिरो दिया है कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जिस तरह मोतियों की माला में मोती तो दिखते हैं परंतु वो धागा नहीं दिखता, उसी तरह से इस संसार में तुम्हें सब कुछ दिख रहा है परंतु मैं नहीं दिख रहा। लेकिन दिख रहा नहीं है इसका मतलब ये थोड़े है कि धागा है ही नहीं, है ना। अगर मोतियों की माला है तो डेफिनेटली उसके अंदर धागा है। उसी तरह ये संसार जो इतना सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, हर एक कार्य अपने टाइम पीरियड के साथ, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वर्षा होती है, सूर्य प्रकाश होता है, रात होती है, दिन होता है, ये सब कुछ हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं इस संसार को चलाने वाला, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, ये संसार जो है वो मेरे इशारे पर चल रहा है, ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। भले ही संसार भगवान की शक्ति पर टिका हुआ है, लेकिन भगवान ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है चैप्टर नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। भगवान कहते हैं, नमे विदुसुर गणा प्रभवम न महर्षय अहमादि देवानां महर्षीणां च सर्वश। नमे विदुसुर गणा, मुझे देवता नहीं जान सकते, प्रभवम न महर्षयः और ना ही महर्षिगण जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? भगवान कहते हैं, अहम आदि ही देवानाम, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं का, महर्षिणाम च सर्वशः और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। यानी कि मैंने ही सबको बनाया है। अब जैसे कोई एक वस्तु जिसको आपने बनाया है वो आपके विषय में पूरा पूरा नहीं जान सकती, लेकिन आप उनके विषय में पूरा पूरा जान सकते हो। तो इतने बड़े बड़े महान देवता और बड़े बड़े महान ऋषि भी भगवान कहते मुझे नहीं जान सकते, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति आज अगर कोई खड़ा होकर कहता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान कैसे हो सकता है, तो कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम जानते हैं कि उल्लू जो होता है वो पूरा दिन सोता है और रात को जागता है। अब जब रात को वो जागता है तो उसको कभी सूर्य नहीं दिखता, लेकिन अगर वो उल्लू बैठे एक जगह पर, बहुत सारे उल्लू जमा हो जाए और कहें कि सूर्य नाम की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, है ही नहीं कोई सूर्य, और बाकी एक एक उल्लू जो है वो इस तरह का है ना स्पीच दे रहा है और बाकी सारे उल्लू जो है वो क्लैप करते, हाँ बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सूर्य नाम की कोई वस्तु होती नहीं, दिखती नहीं है, वो तो हमने कभी देखी नहीं है। लेकिन उसको क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, वो तो सोया हुआ था जब सूर्य उदय हुआ था। तो उसी तरह से, लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उल्लू जो है वो मुझे मान रहा है नहीं मान रहा है। सूर्य को कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा कि अरे उल्लू तो मुझे मान ही नहीं रहा, तो मुझे अपनी सत्ता की उसको है ना दिखाना चाहिए कि मैं हूँ, तो उसको दिखाने के लिए वो रात को भी निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उल्लू उसको मानता है या नहीं मानता। उसी तरह से भगवान है और भगवान समस्त सृष्टि को चला रहे हैं। जिस प्रकार सारी सृष्टि ये चल रही है, सूत्रे मणि गणा एवं, भगवान जो है वो धागे की तरह इस पूरी सृष्टि को अपने अंदर पिरोए रखते हैं। लेकिन यदि कोई उल्लू, भगवान कहते हैं अवजानंति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, वो नहीं जानते, वो बेवकूफ है, अवजानंति मुझे जानते नहीं है, मूढ़ा बेवकूफ है, और जब मैं ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन भगवान, जिस तरह सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई मानता है या नहीं मानता, उसी तरह से भगवान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई मानता है या नहीं मानता है। अगर फर्क पड़ता है तो किसे पड़ता है? जो नहीं मानता है। क्योंकि जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते, भगवान को सरेंडर नहीं होते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक हमारा कल्याण होना संभव नहीं। इसीलिए भगवान जो है वो बारंबार अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, गुरु भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, ताकि जीव का कल्याण हो। और जीव का कल्याण तभी संभव है जब वो भगवान के विषय में जानेगा। इसलिए भगवान अपने स्वयं मुखारविंद से कहते हैं कि देखो अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, और जो मेरी शरण में आता है केवल उसी का कल्याण संभव है। आगे भगवान बताएंगे कि यान्ति मध्याजिनोपि माम, जो मेरी शरण में आते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, और जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेते हैं, यत कृत्वा न निवर्तन्ते, उसे कभी भी भौतिक दुखों को झेलना नहीं पड़ता, भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। और यही सिद्धि के विषय में भगवान ने यहाँ पर बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। वास्तविक सिद्धि क्या है? आप मुझे जानो। तो यहाँ पर भगवान ने अपने विषय में बोलना शुरू किया है। अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान अपने विषय में बोलते जाएंगे और हम भगवान के इन मधुर शब्दों का पान करते करते आनंदित होते रहेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।